28 जनवरी 1967 को दूसरे देश के मध्य में बात चल रही थी, जो जास्ती सर्विस करते हैं वो जरूर उच्च पद पावेंगे। क्या करते हैं? सर्विस जास्ती करते हैं, और जो सर्विस जास्ती करते हैं उनको नीच पद पाएंगे। सर्विस किसे कहा जाता है और डिससर्विस किसे कहा जाता है? क्या कहने से, क्या करने से सर्विस होती है और क्या करने से डिससर्विस होती है? सर्विस किसकी करनी है? सेवा किसकी करनी है?
बाप का परिचय
देना,
बाप की परिचय देने की सेवा करनी है। तो बाप का परिचय अगर एक एग्जैक्ट मिलता है तो सर्विस है, और एग्जैक्ट परिचय नहीं मिलता है तो पूरी सर्विस नहीं है। बेसिक नॉलेज में परिचय मिलता है ज्योति बिंदु, बेसिकली परिचय मिला। हमारी आत्मा ज्योति बिंदु, हमारा बाप ज्योति बिंदु। अब जो आत्माएं पार्ट बजाने वाली पार्टधारी हैं 500-700 करोड़, उन आत्माओं के बीच में सुपरमेसी का पार्ट बजाने वाली, हीरो पार्ट बजाने वाली वो आत्मा कौन, जिसे परमात्मा कहा जाता है? कहते हैं ना परम पिता परमात्मा, परम पिता पहले परमात्मा बाद में। परमात्मा पहले क्यों नहीं? क्योंकि आत्माएं तो ढेर हैं, और ढेर पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच में सुपरमेसी का पार्ट बजाने वाली आत्मा एक है, लेकिन उसका कोई अस्तित्व दुनिया में विशेष नहीं है जब तक सुप्रीम सोल उसमें प्रवेश न करे। इसलिए सुपरमेसी जो है वो सुप्रीम सोल की इसलिए गिरती है जाकर कि वो सब आत्माओं का बाप है, जिसमें प्रवेश करता है उसका भी बाप है। परम आत्मा पार्टधारी, हीरो पार्टधारी सबका बाप नहीं है। माना 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं का तो बाप है, लेकिन सुप्रीम सोल का बाप नहीं है। तो बात आती है परिचय देने की, सर्विस करने की, सेवा करने की। आत्माओं की सेवा तब होगी जब उनको अपना आप का और बाप का परिचय मिले। तो बेसिक नॉलेज में तो अधूरा अधूरा सा परिचय मिला कि बिंदु बिंदु हम आत्माएं और हम बिंदु आत्माओं का बाप परम पिता शिव, वो भी ज्योति बिंदु। लेकिन वो ज्योति बिंदु कौन है, किस रूप में कार्य करता है, कैसे गीता ज्ञान सुनाता है, कब गीता ज्ञान सुनाया, कब से शुरू किया, और वो गीता ज्ञान की इति कहां तक होती है, कब होती है, ये सारी डिटेल की बातों का परिचय जब तक न मिले, और किस स्वरूप के द्वारा होती है परिचय, तो पूरा परिचय नहीं कहा जा सकता। जब पूरा परिचय नहीं मिलेगा तो आत्माओं की पूरी सेवा भी नहीं होती। तो सबसे पहली बात आकर के जाती है सेवा में बाप का पूरा परिचय। तो बाप का जो परिचय अगर देते हैं तो है सर्विस, और बाप का परिचय न देकर के भटकाते हैं तो है इस सर्विस। तो बताया जो जास्ती सर्विस करते हैं वो उच्च पद पाते हैं। जास्ती सर्विस में देखा जाता है, सभी स्टूडेंट्स आपस में समझते हैं कि ये जास्ती सर्विस करता है और ये सर्विस उतनी जास्ती नहीं कर रहा है, या ये डिसर्विस कर रहा है, ये पता तो लग जाता है ना। सर्विस जब जास्ती करते हैं तो उनमें नंबर वार सब के सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं। बेसिक नॉलेज में भी प्रत्यक्ष हुए, बेसिक नॉलेज में कौन प्रत्यक्ष हुए?
ब्रह्मा
नहीं, ब्रह्मा बाबा तो मुख से तो बोल ही रहे हैं, वो तो ब्रह्म ही बाबा हो गए। वो तो माँ का रूप हो गया, उनके द्वारा तो सर्विस हुई ही हुई, लेकिन बच्चों के बीच में जास्ती सर्विस करने वालों में बाबा किसका किसका नाम लेते थे? भाव का नाम नहीं लिया, लेकिन जब तक बाबा जीवित रहे बाबा की नजरों में विश्वेश्वर भाव जितना वफादार था उतना और कोई वफादार साबित नहीं होता था, और सर्विस भी बहुत करता था, सिर्फ ज्ञान नहीं सुना सकता था, क्या ज्ञान नहीं सुनाता था, बाकी बाबा का जितना कारोबार था ये की काम सारा समेटता था संभालता था। और बाबा के शरीर छोड़ने के बाद भी वो आत्मा बाबा के शरीर छोड़ने से पहले ही शरीर छोड़ चुकी थी। बाबा ने एक साल के बाद शरीर छोड़ा, उसने एक साल पहले शरीर छोड़ दिया। तो इस रूप में भी हम शरीर धारण करके अभी भी टीक ही जा रहे हैं। चलो सूक्ष्म शरीर को तो कोई देखता नहीं, लेकिन स्थूल शरीरधारी जो बच्चे हैं उनमें तो बाबा किसी का नाम लेते थे, जगदीश भाई का नाम लेते थे, रमेश भाई का नाम लेते थे, और रमेश का नाम लेते थे ना, जगदीश भाई का नाम लेते थे ना, तो जिन भाइयों का नाम लेते थे वो तो जरूर बेसिक नॉलेज में महारथी बच्चे गिने, भले बाबा ने हद में बोला और उनका बेहद में अर्थ कोई दूसरा लगता है। रमेश का अर्थ होता है रमा ईश, रमा माना पार्वती, ईश माना उसका स्वामी माना शंकर, ऐसे ही जगदीश जगत का ईश, तो हद में तो जगदीश वो हुए। जिन्होंने अभी शरीर छोड़ दिया है और बेहद में सारे जगत का ईश्वर बनने वाला कोई तो होगा, सारे जगत को कंट्रोल करने वाला कोई तो जगन्नाथ होगा, तो जो होगा वो सारे जगत के ऊपर कंट्रोल स्वतः ही करेगा या शक्तियों के द्वारा करेगा? शक्तियों के द्वारा करेगा। जो शिव की शक्तियां होंगी वो शिव के ऊपर स्वाहा होंगी या नहीं होंगी? और शक्तियों में भी कोई तो प्योरिटी का आधार मानी जाती है, जिन्हें कहा है कन्याकुमारी और दूसरी है आदर कुमारी। आदर कुमारी माने माता है और कुमारी माने कन्या। तो कुछ कन्याएं ऐसी भी तो निकलेंगी जो दुनियादारी से छोड़ करके पूरी ही पूरी ईश्वरीय कार्य में अपने को सेवा में सरेंडर कर दें। अगर वो संसार की नजरों में सामने ही नहीं निकलेंगी तो फिर जो गुप्त पार्ट बजाने वाली गोपियां हैं वो परमात्मा को प्रत्यक्ष कैसे कर पाएंगी? पहले तो आदमी प्रैक्टिकल जीवन देखता है, प्रैक्टिकल में कौन कितने सरेंडर हुए, भले ये बुद्धि की बात है, बाबा कहते हैं जो घरगस्त में रहते हुए भी तन मन धन से सरेंडर है, अपने को सरेंडर समझते हैं वो भी सरेंडर है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई क्या पड़ता है? जो प्रैक्टिकल में अपना घर घाट छोड़ करके सारा संसार छोड़ करके संसार की गतिविधि छोड़ करके ईश्वरीय कार्य में जिन्होंने अपने को झोंक दिया तो वो तो दिखाई पड़ता है ना सबको, तो उसे पता लग जाता है कि ईश्वर का कार्य ये चल सकता है और दूसरा नहीं चल सकता है। इसलिए बाबा ने बोला है राजयोग सीखने वाले कितने होंगे? 16,000 गोप गोपियां होंगे। 16,000 जो गोप गोपियां होंगे वो सरेंडर्ड वर्ग में से होंगे या नॉन सरेंडर्ड वर्ग में से होंगे? नहीं, अगर होंगे भी बाहर तो भी तन मन धन से पूरे सरेंडर दिखाई देंगे। अरे भाई इसने तो पूरा अपना तन पूरा मन पूरा धन पूरा समय संपर्क संबंधी सब ईश्वरीय सेवा में झोंक दिया। तो उनको सरेंडर कहा जाए या नॉन सरेंडर कहा जाएगा? उनको भी सरेंडर कहा जाए। उनमें मुख्य नंबर जास्ती कौन ले जाते हैं? क्योंकि कन्याएं स्वतंत्र होती हैं, माताएं थोड़ी बंधन में होती हैं, तो बंधन में रहने के कारण वो उतना जास्ती उछल नहीं सकती। बंधन वाली चिड़िया ऊपर नहीं उड़ेगी, और जो निर्बंधन चिड़िया होगी वो चाहे तो बहुत ऊपर उड़ सकती है। तो जो कन्याएं सरेंडर होती है, वो कन्याओं के सरेंडर होने से पता लग जाता है कि भगवान का कार्य कहाँ चल रहा है। दुनिया में ऐसा कहीं हुआ नहीं होगा कि बिन फेरे हम तेरे। ईश्वर जहाँ कार्य कर रहा होगा वहां प्रैक्टिकल में वो शिव शक्तियां जरूर आगे रहेंगी, और वो पहले अपने ईश्वरीय सेवा में अपने को स्वाहा करके भगवान को प्रत्यक्ष करेंगी। तो बोला जो जास्ती सर्विस करते हैं तो जरूर ऊंच पद पाएंगे। सर्विस तन से होती है, सर्विस मन से होती है, धन से होती है। समय जो भी 24 घंटे का आदमी को मिलता है वो समय कितना लगाता है उसे भी सर्विस होती है। देखने में आता है कि ये तो अपना सारा समय इसी कार्य में लगा रहा है। जो भी संबंधी है उन संबंधियों की सारी ताकत उस इंद्रिय सेवा में झोंक रहा है। तो इन सब बातों से ये पता लग जाता है कि ये जास्ती सर्विस करने वाला है और ये कम सर्विस करने वाला है और ये डिसर्विस करने वाला है। तो जास्ती सर्विस करने वाले उस पर पाएंगे, जैसे रमेश बॉम्बे वाला है, सर्विस का बहुत शौक है। बेसिक नॉलेज में तो रमेश की बात की, और एडवांस नॉलेज में भी कोई रमेश है जो तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से, जो भी संबंधी है, हैं या नहीं है, तो उनको ईश्वरीय सेवा में लगाना है। कहते हैं बाबा नौकरी छोड़ दूं। चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो बाबा से बोला होगा, पूछा होगा, बाबा नौकरी छोड़ दूं? खाने के लिए तो है ही हमारे लिए, बाबा का बन गए तो शिव बाबा की ही हम परवरिश लेंगे, फिर हम दुनिया की परवरिश क्यों लें? बाबा कहते हैं अभी नहीं। इस बच्चे से क्या कहा? अभी नहीं। उस समय हद का रमेश वो भी था, और बेहद का रमेश भी सन 67 में वो भी था, वो भी नौकरी कर रहा होगा, और हद का रमेश भी नौकरी कर रहा होगा। तो बाबा कहते हैं अभी नहीं, क्योंकि अभी तुम वानप्रस्थी तो हो नहीं। क्या अभी तुम वानप्रस्थी स्टेज में नहीं आए हो? वानप्रस्थी को बाबा झट कह देते हैं। दुनियादारी छोड़ो, इसी सेवा में लग जाओ। आप कहते हैं मैंने भी वानप्रस्थी में प्रवेश किया है। क्या वानप्रस्थी अवस्था हुई तो मैंने प्रवेश किया, चाहे प्रजापिता में और चाहे प्रजापिता ब्रह्मा, जब तक वानप्रस्थी अवस्था नहीं हुई प्रवेश नहीं किया। ब्रह्मा में कब प्रवेश किया? 47 में उनकी वानप्रस्थी अवस्था हुई 7 साल, तो उनके द्वारा मुरली चली। पता कैसे लगता है कि मेरा बाप भगवान पढ़ाते हैं? जब ज्ञान देते हैं तो पता पड़ता है कि इनके द्वारा मुरली सुनाई। तो सन 47 से जो मुरली चलाई गई, उस मुरली से सबको पता पड़ने लगा कि ये है ब्रह्मा के द्वारा बाबा का, शिव बाबा का पाठ चल रहा। तो बाबा ने भी वानप्रस्थी में प्रवेश किया है। वानप्रस्थी में प्रवेश किया, देखो वानप्रस्थी कन्याएं, बूढ़ी माताएं, क्यों निकल सकती है? वानप्रस्थी हो या न हो, बूढ़ी माताएं हैं उनके ऊपर परिवार का कोई बोझ रहता नहीं, और वो तो बूढ़ी है तो वानप्रस्थी तो जरूर होंगी। और कन्याएं
निर्बंधन,
कन्याएं निर्बंधन है, इसलिए उनको दुनियादारी का कोई बंधन है नहीं, वो भी निकल सकती है। अगर माताएं भी जवान हैं तो फिर उनको घर में रहते सर्विस करनी है, नहीं तो एक एक माता के पीछे एक एक माता लगानी पड़ेगी। बाबा सोचते हैं ये तो बड़ी झंझट हो जाएगी।
और ज्यादा माताएं लगी,
हाँ, इसलिए माताएं अगर बड़ी बूढ़ी है, वानप्रस्थ अवस्था की है, पकी हुई उम्र की है, तो भले ही सूर्य सेवा में निकले, अगर ये नौजवान है तो फिर बाबा उनको परमिशन नहीं देते, जवान है तो घर में रहते सर्विस करें। बाबा हर एक के सर्कमस्टांसेस देख करके राय देते हैं, इनकी स्थिति परिस्थिति कैसी है। शादी आदि के लिए अगर अलाउ न करे तो फिर हंगामा हो जाए। हर तरफ हंगामा बढ़ता जाता है, इसलिए हर एक का हिसाब किताब देख करके राय दी जाती है। कुमार है तो कहेंगे सर्विस कर सकते हो, वेद के बाप से वर्षा लो, तो बाप से क्या मिलेगा, माने लौकिक बाप से क्या मिलेगा, दो रोटी, वो सब मिट्टी में मिल जाना है। दिन प्रतिदिन समय कम होता जाता है, समझाते हैं हमारे मिल्कियत के बच्चे वारिसदार बनेंगे, परंतु बाप कहते हैं किसी को कुछ भी मिलने का नहीं है, कोई वारिसदार बनने वाले नहीं है, मिल्कियत सब की खाक में मिल जाती है। वो तो समझते हैं पिछाड़ी वाले खा लेंगे, हमारी जो पिछाड़ी जो भी हमारे वारिसदार हैं वो खूब खाएंगे पिएंगे, इसलिए हम खूब कमा के रख दें। अरे धनवान का धन खत्म होने में देर थोड़ी लगती है, मौत तो सामने खड़ा ही है, कोई भी वर्षा नहीं ले सकेंगे, है जी 9-10 वर्ष। अरे तो वर्षा कैसे पावेंगे, कौन सा वर्ष, 9-10 वर्ष है, 9-10 वर्ष है, 9-10 वर्ष के बाद दुनिया खलास हो जाएगी, तो कौन सी सन की तरफ इशारा किया, 76 की तरफ इशारा किया, 9-10 वर्ष है तो वर्षा कैसे पावेंगे, माने सन 76 में 9-10 वर्ष खलास हो जाएंगे, दुनिया खलास हो जाएगी क्या, लौकिक वर्षा नहीं पावेंगे क्या, लौकिक तो पावेंगे, लेकिन जो लौकिक पावेंगे वो लौकिक कितने समय चलेगा, वो भी तो अल्पकाल के समय चलेगा, बहुत कम है जो पूरी रीति समझा सकते हैं, क्या कि 9-10 वर्ष में कौन सा वर्षा पाना है और कैसा वर्षा पाना है और कौन देने वाला है, पूरी रीत कोई समझा ही नहीं सकते। तो जो जरूर जो जास्ती सर्विस करने वाले होंगे वो ही ऊंच पद को पावेंगे, यहां कौन सी पूरी रीत समझाने वाली बात आई,
हद का वर्षा और बेहद का वर्षा
नहीं, 9-10 वर्ष वाली बात, 9-10 वर्ष वाली बात माने सन 76 में जो वर्षा पाना है वो वर्षा पाने वाली बात किसी की बुद्धि में आई नहीं, और कौन सी दुनिया खलास होनी है वो भी बात किसी की बुद्धि में आई नहीं। तो जो जास्ती सर्विस करने वाले हैं पूरी रीति समझा सकते हैं उनका फिर रिगार्ड भी करना चाहिए, नहीं तो अहंकार में आ जाते हैं। अहंकार में आते हैं तो फिर डिसरिगार्ड करने लग पड़ते हैं, और डिसरिगार्ड भी यहां तक करते हैं कि ग्लानी ही ग्लानी करने लग पड़ते हैं। जो ग्लानी करता है ना वो कोई ना कोई बात में अंदर अहंकार चढ़ा हुआ है, वो अहंकार उसका पूरा नहीं हुआ इसलिए ग्लानी दूसरों के सामने करते हैं। बाप कहते हैं यहाँ तो रिगार्ड रखना पड़े, कहाँ ज्ञान में छोटे बड़े का रिगार्ड रखना पड़े, इनसे सीखना है, इनसे इशारा किया ब्रह्मा बाबा। देखो छोटे बड़ों को कैसे, छोटों का भी रिगार्ड रखता है, अपने से बड़ों का तो रखना ही रखना है, कैसे रिगार्ड रखते हैं, 21 जन्मों के लिए रिगार्ड रखना पड़े क्या? जो जास्ती सर्विस करने वाले हैं उनका रिगार्ड एक जन्म की बात नहीं 21 जन्म तक रखना पड़े, कंपल्सन है रखना पड़ेगा। तुझे हम नहीं मानते तो भले थोड़े समय के लिए अभी नहीं मानते, आगे चल के नाक
रगड़नी पड़ेगी,
नीची करनी पड़ेगी। रिगार्ड रखना पड़े, पड़े माने कंपल्सन, ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्या? ऐसा समा बन जाएगा कि ऑटोमेटिकली रिगार्ड जरूर ऊंच वो पद पावेंगे जो सर्विस करेंगे। तो रिगार्ड तो जहां तहां रखना ही है, खुद भी समझ सकते हैं कि हमको क्या पद मिलेगा, फिर भी कोई अफसोस थोड़ा ही होता है कि हम नापास हो जाएंगे। या तो कोई नापास हो जाते हैं तो जाकर के कुएं में कूदते हैं, वो तो हद का कुआं हो गया। यहाँ कोई ऐसे हैं बेहद में जो जानते हैं कि हम नापास हो गए तो क्या करते हैं, फिर बेहद की कुएं में कूद पड़ते हैं,
नीचे उतरते
हैं, लगाए जाओ छलांग। यहाँ तो समझते हैं जो मिले सो भी अच्छा, या तो समझते हैं अच्छा जो भी मिले तो अच्छा, इस बात में ही खुश हो जाते हैं। अरे ये तो बेहद की पढ़ाई है क्या, इसमें तो एक से एक ऊंचे पद है, कितने पद है टोटल मिला के, पद कितने हैं एक से एक ऊंचे, नहीं उससे भी बड़े हैं 16,000, 108 पद हैं। प्रजा वर्ग में तो कोई पद की बात ही नहीं, हाँ प्रजा में भी कोई फर्स्ट क्लास साहूकार बनेंगे, कोई सेकंड क्लास साहूकार, कोई फर्स्ट क्लास प्रजा, कोई थर्ड क्लास प्रजा। तो ये बेहद की पढ़ाई है, राजधानी स्थापन हो रही है ना, इस पढ़ाई से तुम प्रिंसिपल बनते हो, कितने प्रिंसिपल बनेंगे 16,108 प्रिंसिपल बनेंगे। वो प्रिंसिपल कॉलेज में पढ़ते हैं कौन, दुनियावी, वो फिर बहुत धन दान करते हैं, वो फिर राजाओं के पास व साहूकारों के पास जाकर के जन्म लेते हैं, परंतु वो है अल्पकाल का सुख। ये तो है 21 जन्मों का सुख, इसे पढ़ाई पर बहुत अटेंशन देना चाहिए, किस पढ़ाई पर, इस पढ़ाई पर, तो इस कहकर कि किस पढ़ाई की तरफ इशारा दिया, मुरली जो बाबा के द्वारा पढ़ाई जा रही है सुनाई जा रही है उसके ऊपर तो बहुत अटेंशन देना चाहिए, बजाय अटेंशन देने के उसको ये साबित कर दिया है तो 50% इसमें पानी। ब्रह्मा की वाणी में 50% पानी साबित कर दिया जाए और 50% वो असली है, तो फिर तो निश्चय तो उभर गया, पढ़ाई भी पूरा ऊपर निश्चय ही उभर गया, तो पद क्या पाएंगे। बहुत अटेंशन देना चाहिए, सर्विस का होना रहना चाहिए, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाबा जानते हैं ऐसी सर्विस का शौक कोई कोई को है। लक्षण भी अच्छे चाहिए ना, ऐसे नहीं कि डिस सर्विस करके यज्ञ का भी नाम बदनाम करें और अपना भी नुकसान करें। भाई का नाम बदनाम करें, यज्ञ किसे कहा जाता है? दीवारों को, ज्ञान को यज्ञ कहा जाता है। ज्ञान माने जानकारी, जानकारी जो है वो किसके द्वारा मिलती है? ऊंचते ऊंचे के द्वारा हमको जानकारी मिलती है, जिससे ऊंचा दुनिया में कोई होता नहीं। इब्राहिम बुद्ध तो ऐसे भी ऊंचे हैं, लेकिन उनसे भी ऊंचा वो सुप्रीम सोल शिव बाबा जो इस सृष्टि पर आता है, वो सबसे ऊंचे ज्ञान देता है। अगर उस ज्ञान के कारणकारी का विश्लेषण पूरा ना हो पाए तो नाम बदनाम होगा ना। कोई एक एक बात के पीछे पड़े और पूछे तो हर बात का जवाब ही तो आना चाहिए। सर्विस करके यज्ञ का नाम बदनाम कर देते हैं, अपना नुकसान करते हैं। 28 जनवरी 1967 की वाणी का तीसरा दिन, बाबा तो हर बात के लिए समझाते रहते हैं, मेडल्स के लिए कितना लिखते रहते हैं। मेडल्स क्या होता है? जेब में लटकाते हैं। ब्रह्मा बाबा के समय प्लास्टिक के चार चार आने की चित्र लिखते थे, प्लास्टिक के बने हुए, उनमें एक तरफ त्रिमूर्ति होता था, दूसरी तरफ लक्ष्मी नारायण का चित्र होता था, उसको बाबा मेडल नाम देते। तो बोला मेडल्स के लिए कितना लिखते रहते हैं। फिर समझा जाता है ड्रामा अनुसार देरी पड़ती जाती है। गुरु की पॉकेट में वो मेडल्स है, समझने और दूसरों को समझाने में ड्रामा अपने अनुसार देरी पड़ रही है, नहीं तो बुद्धि में छप जाने चाहिए। क्या मेडल्स में जो त्रिमूर्ति है, वो त्रिमूर्ति के बारे में जो बुद्धि में बोला है, क्या बोला है?
सभी के पॉकेट में पड़ा
रहे, सभी की बुद्धि रूपी पॉकेट में ये मेडल पड़ा रहे। कोई भी नया जिज्ञासु आए, हट से निकाला और उसको समझाना, ये तुम्हारा बाप है, ये है रचयिता और ये है रचना और ये है तुम्हारा वर्षा। लक्ष्मीनारायण का चित्र दिखा दो, ये है तुम्हारा वर्षा। तो एक्यूरेट किसी की बुद्धि में समझाएंगे तो बुद्धि में बैठेगा। जो बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति का चित्र है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, तो बच्चों को एक्यूरेट चित्र निकालना चाहिए। एक्यूरेट क्यों ना निकाले? एक्यूरेट निकालेंगे तो सबकी बुद्धि में बैठेगा कि ये त्रिमूर्ति शिव क्यों कहा जाता है, एक मूर्ति क्यों नहीं कहा जाता। बेसिक नॉलेज में क्या किया? एक मूर्ति बना दी। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा की जगह तो ब्रह्मा को बैठाया ही, लेकिन विष्णु की जगह भी ब्रह्मा का ही चेहरा लगा दिया और शंकर की जगह भी ब्रह्मा का चेहरा लगा दिया। बाबा कहते हैं ये एक्यूरेट चित्र नहीं है। होली में बोला ये एक्यूरेट चित्र नहीं, तो बच्चों को एक्यूरेट चित्र निकालना चाहिए। तो एक्यूरेट चित्र निकालेंगे तो एक्यूरेट दूसरों को भी समझा सके। परंतु ड्रामा प्लान अनुसार देरी पड़ती जाती है। ये लक्ष्मी नारायण फर्स्ट क्लास है। बाबा ने कहा 30x40 इंच का बना दो, परंतु बनावे कौन? जो पूरी रीति वाकुफ हो, वाकुफ माने
मालूम हो,
जानकार हो वो ही बनावे, जानकार हो वो ही बनावे। पूरी रीति जानकारी नहीं है, आज निश्चय बैठता है कल निश्चय
उखड़
पड़ता है, तो पूरी रीति जानकार कहाँ हुआ? पूरी जान पार हो वो बना भी तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। खुद ही निश्चय नहीं है तो दूसरों का कल्याण कर नहीं सकते। माया की ग्रहचारी भी तो होती है ना। आज बृहस्पति की दशा है, कल राहु की दशा बैठ जाती है। इसकी दशा है अभी
बृहस्पति।
बृहस्पति क्या होता है?
गुरु।
गुरु तो होता ही है, गुरु भी होता है, लेकिन उसका नाम क्या है? बृहस्त माने बड़ा, पति माने पति, वो पतियों का भी पति है, रक्षा करने वाला है। वो बृहस्पति की दशा बैठती है। जब बृहस्पति की दशा बैठती है तो बुद्धि में उसकी महिमा जम जाती है, और जब बृहस्पति की दशा उखड़ जाती है और राहु की दशा बैठ जाती है तो फिर बृहस्पति की ग्लानी करने लग पड़ते हैं और राहु की प्रशंसा करने लग पड़ते हैं। तो वो दशा बैठ गई। बृहस्पति की दशा है आज, पर राहु की दशा बैठ जाती है। ड्रामे में साक्षी होकर के पार्ट को फिर देखना होता है। क्या अगर ऐसा कोई है जिसमें आज बृहस्पति की दशा कल राहु की दशा बैठ जाए तो बाबा कहते हैं उनको फिर साक्षी होकर के देखो कि देखो ये क्या करते हैं। ऊंच पद पाने वाले बहुत कम होते हैं ना। क्या जो ऊंच पद पाने वाले होंगे वो अपना भी नाम बाला करेंगे और बाप का भी नाम बाला करेंगे। इन चित्रों का मीडियम बना देंगे तो बहुत आगे रहेंगे। इन चित्रों का लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ इशारा दिया, ब्रह्मा विष्णु शंकर की मूर्ति के चित्र की तरफ इशारा दिया कि इनके चित्र मीडियम जैसा बना देंगे तो बहुत आगे। अच्छा बेसिक में तो मीडियम बनेगी नहीं बने,
बने
तो जब से म्यूजियम बने तब से सर्विस भी बहुत होने लगी। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा और माउंट आबू में सबसे पहला म्यूजियम सनसेट पॉइंट रोड पर बन गया और ढेर के ढेर लोग आकर के उसमें सेवा लेने लगे। वो तो वो हद का म्यूजियम। क्यों हद का? क्यों जड़ चित्रों वाला म्यूजियम। अब बाबा तो जड़ चित्रों का म्यूजियम एक जगह सेट करने के लिए बोलते हैं या चैतन्य चित्रों को एक जगह सेटिंग हो जाए। बेचारे बाप से फिर रहे होंगे। चैतन्य प्रदर्शनी ऐसी प्रदर्शनी नहीं, प्रदर्शनी तो उठाओ उठाई जाती है, इधर से उधर ले जाई जाती है। वो तो चलने फिरने वाला सेवा का साधन हुआ। लेकिन म्यूजियम उसे कहा जाता है जो एक जगह बैठा दिया जाए। क्या एक जगह बैठा दिया जाए और लोग आए और दर्शन करें और निश्चयवान बने। तो ऐसा म्यूजियम तैयार करो तो बहुत आते रहेंगे। ऐसा म्यूजियम चैतन्य चित्रों का एक स्थायी म्यूजियम तैयार करो तो बहुत आने के लिए।
सारे तो नहीं पहुँच सकते। चैतन्य म्यूजियम जो है वहाँ कहाँ सारे पहुँच सकते?
खड़ा
तो कर सकते हैं,
खड़ा कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या कमी है? अभी तो लक्ष्मी का ही पता नहीं। अभी अभी लक्ष्मी को जो कलश देगी बांटने के लिए उसी में घोटाला पड़ रहा है। अभी यही पता नहीं चल रहा है कि अम्मा माताओं की अम्माओं की अम्मा कौन
है।
माताएं जो सबसे ज्यादा दुर्गति में गिरी है, उन दुर्गति में गिरने वाली अम्माओं की अम्मा कौन है? जो सबसे ज्यादा जिसकी जो दुर्गति होती है वो कौन है? रावण संप्रदाय माताओं की दुर्गति करते हैं ना। तो बोला विष्णु भाई आज विराम बैठे बैठे
कुछ कुछ बातें बोल कर संगठन बंद करवाते हैं। ऐसी दुर्गति
इन चित्रों का म्यूजियम बना देंगे तो बहुत आते रहेंगे। ये चित्र ट्रांसलाइट के बनने चाहिए। ट्रांसलाइट जड़ होता है कि चैतन्य होता है? दोनों के से ट्रांसलाइट की चैतन्य का होने दुकानों सड़कों पर और मार्केट में बहुत लगे हुए देखे। वो तो खूब चमकीले होते हैं, चमक मारते रहते हैं। चैतन्य कैसा होता है? ज्ञान की चमक। जवाब ज्ञान ज्ञान तो कानों से सुना जाता है। जो 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 ट्रांसलाइट होती है वो आंखों से देखने की चीज है कि कानों से सुनने की चीज है? मना वो ऐसी अवस्था चढ़ी हुई होगी, चलन ऐसी चढ़ी हुई होगी, बढ़िया ऊंची स्टेज होगी जो सबको आकर्षित करेगी। जैसे क्राइस्ट का चेहरा है, महात्मा बुद्ध का चेहरा है, गुरु नानक का चेहरा है, तो चेहरा देखने से ट्रांसलाइट जैसा दिखाई पड़ता है ना, वो तो चित्रों में दिखाया हुआ। कभी चैतन्य भी तो ऐसे रहे होंगे, तो जैसे चैतन्य वो धर्म पिताएं दिखाई गई है ट्रांसलाइट के देखने में आते गए चित्रकारों में, ऐसे यहाँ प्रैक्टिकल में जो भी लक्ष्मी नारायण तैयार हो और उनको एक जगह बैठा दिया जाए, म्यूजियम बना दे है, तो वो म्यूजियम बना करके जब वो बैठे हुए होंगे तो सब उनका दर्शन करने के लिए आवेंगे। भक्ति मार्ग में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में दर्शन करने के लिए कितने जाते हैं? ढेर सारे जाते हैं। तो जरूर ज्ञान मार्ग में उसकी स्मृति हुई होगी ना, तभी तो भक्ति मार्ग में इतने ढेर के ढेर जाते हैं। वो तो दिवाली पर ही भागते एक ही दिन, लेकिन जब लक्ष्मी अपने युगल के साथ मिक्स होकर के एक हो जाती है, लक्ष्मी नारायण हो जाते हैं, तब फिर बड़ा म्यूजियम वो बड़ा मंदिर बनता है। तो बोला ये चित्र बनने चाहिए, ना बनते हैं तो फिर कहा जाता है भारी, हो सकता है ग्रहाचारी उतर जावे। क्या ये ग्रहाचारी राहु की चढ़ी हुई है, वो ग्रहाचारी उतर जावे, ग्रहाचारी उतरती है तो फिर जंप कर देते, हाई जंप लगाए लेते हैं, उछाट कर अपना जीवन बनाना चाहिए, नहीं तो कल कल पार कर लीजिए सत्यानाश हो जाएगी। समझेंगे कि कल पहले मिशन ही ग्रहाचारी आ गई, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद भी ऊंचा नहीं है, ऊंच पे ऊंच भगवान की श्रीमत है। क्या कहा? कैसे भगवान की किससे कंपैरिजन किया? माना कोई नंबर वार भगवान बन के बैठने वाले होते हैं ना, है तो जो नंबर वार भगवान है वो उनके मुकाबले में जो लास्ट में ऊंच से ऊंच भगवान साबित होता है, और वो अभी भी पार्ट बजाय रहा है, लेकिन अभी गुप्त पार्ट बजाय रहा है या प्रत्यक्ष पार्ट बजाय रहा है? अभी भी गुप्त है। गुप्त ना होता तो बच्चों को निश्चय निश्चय आने का सवाल पैदा ही नहीं होता। ऊंच से ऊंच भगवान की श्रीमत है, इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को तुम्हारी सिवाय कोई समझ ही नहीं सकता। क्या कहा? इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को तुम्हारे सिवाय कोई समझ ही नहीं सकता। जब समझ ही नहीं सकेगा तो समझाए भी
नहीं सकते,
समझाए भी नहीं सकेगा। ये क्या बात हुई?
हिम्मत कैसे बोल रहे
हैं? तुम्हारे सिवाय
बुद्धि में निश्चय चाहिए।
तुम्हारे सिवाय का मतलब क्या हुआ? सन 76 से पहले कोई नहीं समझा क्या?
नहीं
समझा। तो जिन्होंने समझा उन्हीं की बुद्धि में बैठा होगा, और जिनकी बुद्धि में बैठा होगा वो दूसरों को उन्होंने समझाया भी होगा। एप्स के माफिक खड़े होकर के सिर्फ कहेंगे ये चित्र तो बहुत अच्छे बनाए, तुमको तो बच्चे से देखने से सारा सूक्ष्म वतन स्थूल वतन सारी सृष्टि का चक्र बुद्धि में आ जाता है, तुम नॉलेज गुण बनते हो नंबर वार पुरुषार्थ होता। बाबा को तो चित्र देख करके बहुत खुशी होती है। स्टूडेंट्स खुद को खुशी होनी चाहिए ना, हम पढ़ करके ये बनते हैं, पढ़ाई पर ऊंच पद मिलेगा, ऐसे नहीं किसी को भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। पुरुषार्थ से ही प्रारंभ मिलती है, पुरुषार्थ कराने वाला बाप मिला हुआ है, उनकी भी मत पर नहीं चलेंगे तो बुरी गति हो जाएगी। कौन मिला हुआ है? पुरुषार्थ कराने वाला बाप मिला हुआ है। मिला हुआ है का मतलब
सामने
माने प्रैक्टिकल में है, अगर उनकी भी मत पर नहीं चलेंगे तो बहुत बुरी गति हो जाएगी। पहले पहले तो कोई को भी हम मेडल्स पर ही समझा रहे हैं, कोई भी मिले तो जे वैसे बुजुर्ग भी पॉकेट में जो मेडल पड़ा हुआ है, चैतन्य चित्र जो बुद्धि में बसे हुए हैं दिल के अंदर, वो जिसके दिल के अंदर बसे हुए हैं वो दूसरों को समझाए, फिर जो लायक होंगे वो झट गएंगे, हमको ये मिल सकते हैं, हमें इनसे मिलाओ।
हाँ, अपने कुल के होंगे।
हाँ, वो झट कहेंगे, झट कौन कहेंगे?
अपने कुल के,
जो अपने कुल के होंगे वो झट कहेंगे, हमें इनसे मिलाओ। क्या हमको ये मिल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। जो हम इनके धर्म का होगा उनको तो तुरंत लग जाएगा, इनके धर्म का होगा, लक्ष्मी नारायण के धर्म का होगा, क्योंकि लक्ष्मी नारायण के बाद भी तो जो नारायण आते हैं वो कम कलाओं वाले आते हैं ना, अगर उनके कुल का होगा तो नहीं समझेगा तुरंत, झट उसको तीर नहीं लगेगा। अगर उनके ही कुल का होगा, पूरे 84 जन्म लेने वाला होगा, तो झट उनको तीर लगेगा। उस धर्म का जो होगा उनको तीर लग जाएगा, खुद भल जहन्नुम में चला जावे मगर दूसरों का कल्याण होगा। बाप तो सेकंड में टीवी पर बैठ दे रही है, मैंने समझाने वाला पूरा ना समझा पाए तो भी अगर समझने वाला फट से निकल आता है तो वो जो फट से निकला हुआ है वो जन्नत में जाएगा, और जिसने समझाया है वो भले जन्नत में चला जाएगा, क्योंकि वो फट से नहीं समझा, वो थोड़ा रगड़ की। तो ऐसे होते हैं उनको सुनाओ तो तुरंत निकल आते हैं, कोई ऐसे होते हैं तो रोज रोज सुनाते रहो, जयबाजी करते रहेंगे, बात बात करते रहेंगे, तो इसमें तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, समझाने में बहुत खुशी रहनी चाहिए। सबसे जास्ती तीखा तीर ये मेडल्स का है, और ये बहुत सिंपल है। हाँ, त्रिमूर्ति और लक्ष्मी नारायण, बाद में लक्ष्मी नारायण को समझाओ और पहले त्रिमूर्ति की बात बाप का परिचय दो, बहुत सिंपल है। इसमें खर्चा भी चारा में पैसे नहीं खर्च होते मेडल में, प्लास्टिक का जो लेंगे चारा में फिर भी खर्च होंगे, लेकिन बुद्धि में जो बैठा हुआ होगा कि ये त्रिमूर्ति में तीन मूर्तियां प्रैक्टिकल में कौन कौन सी है जो सारे विश्व में है प्रत्यक्ष होने वाली है, तो इसमें खर्चा कोई भी नहीं। बाबा खुद कहते हैं मेरे भक्तों को दो। कौन कहता है? बाबा कहते हैं, खुद कहते हैं, खुद कहते हैं माना बिंदी कहती है, खुद कहते हैं माना कोई हमसे कहते हैं, बाबा खुद कहते हैं मेरे भक्तों को दो। क्या? जो मेरी ग्लानी करने वाले हैं उनको ना दो, या जो दूसरे धर्म पिताओं की जी हुजूर करने वाले हैं उनको ना दो। मालूम तो पड़ जाता है ना कि इसकी बुद्धि में ये गुरु बसा हुआ है, इनकी बुद्धि में ये गुरु बसा हुआ है, तो जिनकी बुद्धि में और गुरु बसे हुए हैं उनको ना दो। किसको दो? हाँ, जो मुझे एक को जानने वाले हैं मेरे भक्तों को दो। मेरे भक्त कौन से हैं? शिव के भक्त कौन से होते हैं? शिव के भक्त तो शैव संप्रदाय कहे जाते हैं। हाँ, वो शिव का नाम लेने से ही चटक पड़ते हैं। शिव के भक्तों को तो शिव के भक्तों के पास अंदर घुस जाना चाहिए। हाँ,
मन बुद्धि में मंदिर
जहाँ जहाँ शिव के मंदिर है वहाँ घुस जाना चाहिए। कोई लक्ष्मी नारायण के मंदिर नहीं, ब्रह्मा कुमारी वहाँ वहाँ तो वहाँ दीदी दादी दादाओं की पूजा हो रही है, देवदारी की पूजा हो रही है, पूजा हो रही है, शिव का नाम निशानी गुम कर दिया। बाबा ने एक मूर्ति बोला उनका नाम लाश ही गुम कर दिया,
त्रिमूर्ति में वो दादी दीदी
बिठा दी। तो शिव के भक्तों के पास अंदर घुस जाना चाहिए। हाथ में मेडल हो, बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो राजाओं का राजा बन जावे। बस सारा दिन यही सर्विस करो। क्या क्या सर्विस करो? मेडल पर, मेडल पर चढ़ाने की सारा दिन सर्विस करो कि यह त्रिमूर्ति, यह ब्रह्मा, यह विष्णु, यह शंकर, और इस त्रिमूर्ति के द्वारा शिव भगवान संसार में प्रकट होते और बनाते क्या है, यह लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं। बनारस में तो शिव के मंदिर में बहुत सर्विस हो सकती है। क्या कहा? अच्छा, कौन से? इलाहाबाद के पास वाले बनारस में कहाँ बना बनाया रस मिलता है? तो जहाँ बना बनाया रस मिला है उस मंदिर में तो बहुत सर्विस हो सकती है। शिव के मंदिर में तो बहुत सर्विस हो सकती है, कोई ना कोई निकलेंगे। बहुत आसान सेवा है, कोई करके देखो। खाना तो मिलेगा ही बनारस के मंदिर में, जो सेवा करने वाले होंगे उनको खाना तो मिलेगा ही। सर्विस करके देखो, सेंटर तो वहां है ही, बिकेगा थोड़े ही। अभी बताया ना, बनारस में तो शिव के मंदिर में बहुत सर्विस हो सकती है। कौन सा बनारस की बात की? बना बनाया ज्ञान का रस कहाँ से मिला? जहाँ से मिला वही बनारस का, बेहद का बनारस हुआ। तो बोला बनारस के मंदिर में तो बहुत सर्विस हो सकती है, कोई ना कोई निकलेंगे। कहाँ से निकलेंगे? बनारस से निकलेंगे। बहुत आसान सर्विस है, कोई करके देखो। खाना तो मिलेगा ही। क्या बनारस के मंदिर में खाना न मिले ऐसी बात नहीं है, खाना तो मिलेगा ही। सर्विस करके देखो, सेंटर तो वहाँ है ही। सवेरे जाओ मंदिर में और रात को लौट आओ। सेंटर बना दो, सबसे जास्ती तुम शिव के मंदिर में सर्विस कर सकते हो। क्या ऊंचे ऊंच है ही शिव का मंदिर। बॉम्बे में भी बबुलनाथ का मंदिर है, वो शिव का मंदिर है, और वो बबुलनाथ का मंदिर। सारा दिन वहां जाकर सर्विस करो। महाराष्ट्र वाले उनको नदी पड़ता है, वहां जाकर के सारा दिन सर्विस करो। इसके लिए बाबा लाख लाख तो मेडल्स छपाने के लिए कहते हैं। लाख तो छोड़ो, 10 लाख बनाओ। क्या
मेडल्स?
10 लाख मेडल्स का क्या जरूरत होंगे?
चैतन्य में बच्चे सर्विस करने वाले,
सर्विस करने
माना। यथा राजा तथा प्रजा। राजा लक्ष्मी नारायण होंगे तो जो प्रजा होगी वो भी कैसी होगी? 16 कला संपूर्ण 84 जन्म लेने वाली प्रजा भी तो विशेष होगी ना। लक्ष्मी नारायण ज्ञानी आत्माएं होंगी तो प्रजा भी सारी कैसी होगी? ज्ञानी आत्माओं की प्रजा होगी। तो कितने मेडल्स बनाओ?
10 लाख
बनाओ। 10 लाख मेडल्स बनाओ। बुजुर्ग लोग तो बहुतों की सर्विस कर बहुतों का कल्याण कर सकते। क्या नौजवान है उनकी तो कम सुनेंगे, क्योंकि ग्लानी बहुत फैलाई हुई है। क्या जब ग्लानी बहुत फैल जाती है तो सोचते हैं यार नौजवान छोकरा छोकरी है, हमको क्या समझाएगा? इसी शक्ल तो देगा ही, हम समझाने चला बुढ़ा होगा, इसकी तो दुनिया की बुद्धि हटी हुई है, इसके लिए ये बात साबित
नहीं
है। तो बुजुर्ग लोग तो बहुत सर्विस कर सकते हैं बहुतों की। ये मेडल्स ही बस है, ट्रायल करके देखो, ढेर प्रजा बन जाएगी। बड़ों को भी ये मेडल दे सकते हैं। सन्यासियों को बोलो, तुम तो मुफ्त धक्के खाते रहते हो, है ये धक्के खाने से तुमको कुछ भी मिलना तो है नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो बस, मन मना भाव। तुम ये मन मना भाव अक्षर भूल गए हो क्या? क्या अक्षर?
मन मना भाव।
मेरे में बुद्धि
लगाओ,
मन मना मेरे, मत माना मेरे, मना माने मन में, भव माना हो जा, मेरे मन में बुद्धि समा जा। बुद्धि से समा जा, कैसे समा जा? माना मन बुद्धि में जो मेरे संकल्प चल रहे हैं वही संकल्प तेरे अंदर चले। अगर वो संकल्प भी अगर विपरीत चल रहे हैं, मैं कुछ और सोच रहा हूं और जिज्ञासु कुछ और सोचने लगे, तो मन मना भव हुआ या तन तना भव हो गया? वो तो झगड़ा हो गया है। तो मन मना भव अक्षर भूल गए हो क्या? मैं कहता हूँ एक व्यापी है और सन्यासी क्या कहते हैं? सर्वव्यापी है। तो मन मना भव हुए झगड़ा बढ़ गया है। झगड़ा भी कहाँ तक बढ़ गया? जिनकी बुद्धि में भी बैठेगा कि परमात्मा सर्वव्यापी है, उनकी बुद्धि एकाग्र होगी या भटक जाएगी, और ही ज्यादा भटक जाएगी। अगर ये बुद्धि में बैठाएंगे कि एक व्यापी है तो बुद्धि एकाग्र होती रहेगी। तो तुम मन बना हुआ अक्षर भूल गए हो क्या? भगवान बात है ना, क्या मन बना भव मेरे मन में समा जाए, माने मेरी मन बुद्धि में तू भी समा जा, अपने संकल्पों को मेरे संकल्पों के अंदर समा दे। अब कृष्ण छोड़े ही भगवान ने क्या? जिसे कृष्ण को सन्यासी याद करते हैं वो कृष्ण भगवान नहीं है। माना कौन से सन्यासी की बात है? ब्राह्मणों की दुनिया में जो वेद के सन्यासी हैं उनकी बुद्धि किसमें लगी रहती है? जो ब्रह्मा बाबा है, जो कृष्ण की सोल है, उनमें उनकी बुद्धि लगी रहती है। तो बोला कृष्ण थोड़े ही भगवान है, माने कृष्ण उर्फ ब्रह्मा बाबा थोड़े ही भगवान का स्वरूप है। वो तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। क्या? वो तो जन्म मरण के चक्र में सबसे जास्ती आते हैं। तो निश्चय अनिश्चय सबसे जास्ती होता है। भगवान कौन है? भगवान को भी निश्चय अनिश्चय होता होगा क्या? जैसे ब्रह्मा कुमारी है, डिसर्विस होती है, उन्हें दिखाई पड़ रहा है बहुत डिसर्विस हो रही है, हमारे सेंटर के सेंटर टूटते चले जा रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा अनिश्चय बैठेगा है? अनिश्चय बैठेगा ना, कि बहुत सारे इतने सेंटर सारे टूट रहे हैं, इतने जिज्ञासु टूट रहे हैं, तो हो सकता है कि हम गलत रास्ते पर हैं और वो रास्ता सही है। तो फिर वो ऐसा समझने वाले भगवान का स्वरूप हुए क्या? वो तो मिट्टी के ढेले हो गए, थोड़ी सी परीक्षा आई मिट्टी के ढेले की तरह टूट गए। और जो भगवान का पार्टधारी होगा वो तो ऐसी परीक्षाओं को कुछ भी समझेगा नहीं, कि ऐसे तोड़ फोड़ करने वाले तो ढेर सारे निकलते ही रहते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। और क्यों निकलते हैं ऐसे? इसलिए निकलते हैं कि इधर माला तैयार होनी है। अगर ये ढेर के ढेर टूटेंगे नहीं
तो माला तैयार
और मनुष्यों के प्रभाव में आवेंगे नहीं तो माला कैसे तैयार होगी? कैसे पता चलेगा कि निश्चय बुद्धि कौन और अनिश्चय बुद्धि कौन होगी? निश्चय बुद्धि विजय से और अनिश्चय बुद्धि विनाश से। जो अनिश्चय बुद्धि विनाश को पाते हैं वो सर्विस नहीं कर सकते, और जो निश्चय बुद्धि होते हैं उनकी बातों से ही निश्चयुक्त बातों से ही पता पड़ता है कि जरूर इनको कुछ प्राप्ति हुई है। तो वो कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, शिव बाबा इनको भी यह पद प्राप्त कराते हैं। बिल्कुल ब्रह्मा और कृष्ण की जोन को भी शिव बाबा यह पद प्राप्त कराते हैं। शिव बाबा प्राप्त कराते हैं, क्यों? शिव बाबा ने प्राप्त नहीं कराया 68 में, क्यों? शिव ने प्रवेश तो किया, शिव बाबा नहीं कहेंगे। किसने प्रवेश किया? शिव ने प्रवेश किया, उनके द्वारा माँ का पाठ बजाया, लेकिन कोई प्राप्ति नहीं हुई। उनमें प्राप्ति कब होनी है?
शरीर छोड़ने के बाद,
जब वो आत्मा प्रवेश करे, पढ़ाई पढ़े और पढ़ाई पढ़ के परिपक्वता की स्टेज को प्राप्त करे। तो शिव बाबा यानी कृष्ण को भी यह पद प्राप्त कराते हैं, फिर धक्के खाने की क्या दरकार है? कृष्ण को भी धक्के खाने की दरकार है? अरे मस्तक के ऊपर बैठा हुआ है तो वही बैठा रहे ना, फिर वहां माउंट आबू में वहाँ गुलजारता जी क्यों धक्के खाने जाता है?
पढ़ाई
घड़ी निश्चय अनिश्चय आता रहता है, पढ़ाई पूरी नहीं हुई है तब तक। सबसे जास्ती अनिश्चय निश्चय किसको आना है? ब्रह्मा की सोल, वो कृष्ण की सोल। फिर धक्के खाने की क्या दरकार? बाप तो कहते हैं सदैव मुझे याद करो, क्या कहीं भी धक्के खाने की दरकार नहीं है? मुझे याद करो, ऐसे नहीं कहते हैं कि मेरे ऊपर लोटा डालो। इनके ऊपर लोटी चढ़ाते हैं ना, है तो ब्रह्मा ये होगा कि चलो हमने तो थोड़ा बहुत समझ ही लिया, एडवांस नॉलेज हमारी समझ में आ तो रही है। अरे इतनी ब्रह्मा कुमारियां हैं, वो हमको फॉलो कर रही है, इन लोटियों को भी तो उठा करके यहाँ सरेंडर करा दे, नहीं बेचारी दुर्गति हो जाएगी, कहाँ जाएंगी? तो बाबा कहते हैं, बाबा ऐसे नहीं कहते कि तुम मेरे ऊपर लोटी चढ़ाओ। ब्रह्मा को बुलाएंगे, खुद ही भटक रहे हैं कभी इधर कभी उधर, वो कैसे लोटी चढ़वाएंगे? बाबा कहते हैं ये नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते कि तुम लोटी डालो, हाँ तुम तो सबसे अच्छी सर्विस शिव के मंदिर में कर सकेंगे। क्या कौन किससे बोले? बच्चों से। सबसे अच्छी सर्विस शिव के मंदिर में कर सकेंगे, परंतु देही अभिमानी अवस्था हो तो कर सकेंगे। साफ दिल तो मुराद हासिल। बनारस के लिए तो बाबा राय देते हैं, फिर पहुंच गए। बनारस के लिए तो बाबा राय देते हैं कि वहां तो वानप्रस्थी भी बहुत है बनारस में, बहुत वानप्रस्थी है। बोलो, हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो वितर विनाश हो जाएंगे, और कोई उपाय नहीं है। सवेरे से लेकर के रात तक शिव के मंदिर में बैठ करके सर्विस करो। शिव बाबा खुद कहते हैं हमारे मंदिर तो बहुत है ना, तुमको कोई भी कुछ कहेंगे नहीं, और ही खुश होंगे। ये तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। बोलो, ये ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, ये कोई देवता नहीं है। कौन? हाँ देवता नहीं है तो तीन मूर्तियों कैसे रखी है? पूजा नहीं होती तो त्रिमूर्ति तीन देवताओं क्यों रखी है? देवदेव क्यों कहते हैं? देवदेव महादेव कहते हैं ना, तो ब्रह्मा देव विष्णु देव और महादेव शंकर, तो देव तो हुआ ना। अरे वो चित्र ही रंग है, उसमें ब्रह्मा असली कौन सा है उसका चित्र तो रखा ही गया। तो ये ब्रह्मा कोई देवता नहीं है, यह भी शिव को याद करके यह पद प्राप्त करते हैं। ओम शांति।